कशिश ने ईशान को रोने दिया। वो बिखर रहा था और कशिश खामोशी से उसे समेटती जा रही थी। चुपके से कितने ही लम्हे खामोशी से उनके दरमियान सरक गए थे। कशिश को जब एहसास हुआ कि ईशान के आंसू अब थमने लगे हैं, तो उसने धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाना शुरू कर दिया, जैसे उसे हिम्मत बंधा रही हो। मुझे नहीं पता कि आज सालों बाद वो यहाँ क्यों आई, पर उनके आने से सालों से जो दर्द आपने अपने अंदर कैद किया हुआ था वो बाहर आ गया। आपको उनसे शिकायत थी जिसे आज आपने जाहिर कर लिया, अपना हर दर्द आज आंसुओं के रूप में बहा दिया। ये बहुत ज़रूरी था ताकि सालों से जो जख्म खुला है और वक्त के साथ नासूर बन गया है वो भर सके और आप अतीत की उन दर्द भरी कड़वी यादों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ सकें। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाइए, सब महादेव पर छोड़ दीजिए, वो बेहतर न्याय करते हैं। आप बस खुद को संभालिए, आप पर इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। कशिश बहुत ही प्यार मोहब्बत से समझा रही थी उसे, और ईशान अब लगभग पूरी तरह से शांत हो गया था। आंसू थम गए थे, पर कशिश पर अब भी उसकी बाहों की पकड़ उतनी ही सख्त थी। उसने कशिश को खुद में बिठा हुआ था, जिससे कशिश को दर्द तो हो रहा था पर ईशान के दर्द के आगे उसे अपने दर्द की कोई परवाह ही नहीं थी। कशिश की बात पूरी हुई, ईशान संभला, तब कहीं जाकर कशिश पर से उसकी बाहों की पकड़ ढीली हुई। कशिश उससे थोड़ा दूर हुई और अपनी हथेलियों से उसके आंसुओं को पोंछते हुए बड़े ही प्यार से बोली, आप ऐसे रोते धोते जरा भी अच्छे नहीं लगते, आप तो मुस्कुराते हुए और गुस्सा करते हुए ही अच्छे लगते हो, इसलिए अब से नो रोना धोना, कशिश बोल रही थी और ईशान एक टक उसे देख रहा था। कशिश चुप हुई तो ईशान ने भरी भरी आंखों से उसे देखा और उसके नम आंखों की नमी अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोला, जिंदगी में बहुत कम लोग या चंद गिने चुने लोग होते हैं कशिश, जिनके सामने हम कमज़ोर पड़ते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि वो शख्स हमें टूट कर बिखरने नहीं देगा, हर स्थिति में संभाल लेगा। और मेरी ज़िंदगी में तुम वो पहली और आखिरी शख्स हो जिसने मुझे हर कमज़ोर और कठिन स्थिति में देखा है। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक्स अलॉट। अब तो आप मुझे पराया कर रहे हैं, हम तो दोस्त हैं और दोस्त का तो फ़र्ज होता है हर सुख दुख में साथ देना, गमों और खुशियों को बांटना, मुश्किल वक्त में सहारा बनना, कशिश ने नाराज़गी से मुंह फुलाते हुए शिकायत की। पर तुम्हारी जैसी दोस्त मुझे पहले कभी नहीं मिली, तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना। जाने ईशान सीरियस था या भावुक कि ये बात बोल गया, पर कशिश की धड़कनें उसकी बात सुनकर पल भर को रुक गई थीं। फिर उसने सौम्य सी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए कहा, नहीं जाऊंगी, अगर आप नहीं चाहेंगे तो कभी आपको छोड़कर आपसे दूर नहीं जाऊंगी। चलिए आप जाकर हाथ मुंह धोकर नीचे आइए, मैं खाना गर्म करके नाश्ता लगाती हूँ। मुझे अब भूख नहीं कशिश, ईशान ने बेचारों सी सूरत बनाई। बदले में कशिश ने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा, फिर उसकी बाँह पकड़कर कमरे में ले जाते हुए बोली, पर मुझे भूख है और मैं खाऊं इसके लिए आपको भी खाना होगा, समझे? इसलिए छोटे बच्चे जैसे नखरे दिखाना बंद कीजिए। कोई भी गुस्सा या नाराजगी कभी खाने पर नहीं निकालते, ये बात अच्छे से अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए और जल्दी से नीचे आइए। कशिश की जिद के आगे ईशान एक बार फिर हार गया। ईशान को छोड़कर वो नीचे आई तो सभी दुखी, उदास और परेशान से बैठे थे। इस सब नाटक में शुभ्रा और शुभिका का स्कूल भी छूट गया था, वो दोनों भी मुंह लटकाए बैठी थीं। कशिश को देखते ही रजनी उसके पास चली आई और परेशान निगाहों से उसे देखते हुए चिंतित स्वर में सवाल किया, ईशू कैसा है कशिश? अब तो बिल्कुल ठीक है और 5 मिनट में नाश्ते के लिए नीचे आ रहे हैं, तो आप सब भी ये उदासी छोड़िए, किसी को शोक मनाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना मन ठीक कीजिए और जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठिए। कशिश ने लगभग ऑर्डर दिया था। ईशान ठीक है ये जानकर रजनी के साथ बाकी सबको भी कुछ सुकून मिला था। हालांकि सुरेखा जी के सालों बाद अचानक इस दहलीज पर आने से सभी कुछ चिंतित हो गए थे, पर कशिश के कहने पर उन्होंने खुद को सामान्य करना ही ठीक समझा। कुछ देर बाद सबने खामोशी से नाश्ता किया और अपने अपने काम के लिए निकल गए। कशिश सब काम करने के बाद अकेले बैठे सोचने लगी कि आखिर सालों बाद वो यहाँ क्यों आई होंगी। आज का दिन खामोशी से कटा, कहीं ना कहीं परेशान सभी थे पर किसी ने किसी के भी सामने जिक्र नहीं किया था। रात को सब सामान्य ही नजर आए, ईशान भी नॉर्मल ही लगा। कशिश जब सब काम निपटाकर कमरे में लौटी तो ईशान अपनी जगह पर नहीं था। कशिश ने नजरें घुमाई तो वो बालकनी में खामोश खड़ा था। कशिश ने पहले कपड़े बदले, फिर दबे पांव से उसकी ओर बढ़ गई। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं और लबों पर चंचल मुस्कान थिरक रही थी। मतलब साफ था कि उसके खुराफाती दिमाग में कुछ शैतानी आइडिया चल रहा था जिसका शिकार ईशान होने वाला था।